शाम के 4 बज रहे थे। त्रिशान जाह्नवी के साथ राजवीर जी के घर आ चुका था। आकांक्षा के जाने की वजह से राजवीर जी थोड़े परेशान थे, तो जाह्नवी और त्रिशान उनके पास आकर बैठ गए। आप कुछ देर जाकर आराम कर सकती हैं, ये दोनों हैं मेरे पास, राजवीर जी ने नर्स को बाहर भेज दिया। वो उनके सामने आकांक्षा और उसकी शक्तियों से जुड़ी कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। उसके जाते ही राजवीर जी बोले, मुझे आकांक्षा के लिए बहुत डर लग रहा है, मेरी अक्षु को कुछ होगा तो नहीं? डोंट वरी दादू, उसे कुछ नहीं होगा, राजपुरोहित जी और रिवांश। रिवांश का नाम जबान पर आते ही जाह्नवी चुप हो गई। रिवांश कौन? राजवीर जी ने पूछा। रिवांश हमारे साथ ही कांगड़ा के आश्रम में रहता है दादू, मेरे दादू की तरह उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं, रिवांश उनकी मदद कर सकता है, इसलिए वो लोग उसे साथ लेकर गए हैं, और साथ में अलीजा भी है, त्रिशान ने बात संभालते हुए कहा। लेकिन वो लोग आखिर गए कहाँ हैं और कब तक वापस आएंगे? राजवीर जी एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। जाह्नवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे सब कुछ बताएं। त्रिशान ने कुछ देर सोचा और कहा, दादू आपको अच्छे से पता है ना कि आकांक्षा के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब आप पर हमला हुआ था तो किसी ने आपसे गड्ढे खुदवाए थे और उन गड्ढों में कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन उन गड्ढों का और आकांक्षा का क्या लेना देना? राजवीर जी ने उनके सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया। ये दादू आज इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, जाह्नवी ने राजवीर जी की तरफ देखकर सोचा। दादू उस गड्ढे में कुछ मूर्तियां थीं, वो मूर्तियां बुराई से जुड़ी हुई थीं, तो दादू आकांक्षा के साथ उन मूर्तियों को नष्ट करने गए हैं, त्रिशान ने जवाब दिया। राजवीर जी, लेकिन वो मूर्तियां हैं कहाँ पर? जहां तक मुझे याद है उस दिन उस गड्ढों में कुछ नहीं था। मैंने उन मूर्तियों को एक ऐसे वक्त में छुपा दिया था जो कि बीत चुका है, जैसे ही त्रिशान ने जवाब दिया, राजवीर जी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगे। त्रिशान और जाह्नवी कुछ समझ पाते उससे पहले राजवीर जी की आंखों का रंग बदल चुका था। उन्होंने जल्दी से जाह्नवी का गला पकड़ा और उसे उठाकर दीवार पर लगा दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा था कि उन दोनों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। छोड़ो मुझे, जाह्नवी ने अटकती आवाज में कहा। जाह्नवी को खतरे में देखकर त्रिशान जल्दी से भाग कर गया और उनके घर में मौजूद मंदिर में से गंगा जल उठाकर लाया। उसने वो गंगा जल राजवीर जी के ऊपर डाल दिया। गंगाजल गिरते ही राजवीर जी वहीं बेहोश हो गए और उनके अंदर से एक काला धुआं निकलकर हवा में अदृश्य हो गया। इन सब से जाह्नवी काफी घबरा गई थी। ये सब क्या था? दादू वो मुझ पर हमला नहीं कर सकते, डर के मारे जाह्नवी कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। त्रिशान ने उसे शांत करने के लिए गले लगाया और चुप करवाते हुए कहा, तुम्हारा पहली बार इन सबसे सामना हो रहा है, शायद तभी दादू हमें राजवीर जी के पास छोड़कर गए थे, लेकिन जाने अनजाने में हमने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि शैतान को उनका पता चल चुका है? त्रिशान ने उदास होकर कहा। तुम भी तो पिछली बार गए थे, तुम वापस उनके पीछे जाओ और उन्हें बताओ, उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करो, मैं दादू के पास हूँ, जाह्नवी ने त्रिशान से अलग होकर कहा। त्रिशान, हालत देख रही हो तुम अपनी, मैं तुम्हें और दादू को यहाँ अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो शैतान तुम दोनों की जान ले लेता। जाह्नवी, लेकिन उन्हें कुछ हो गया तो? डेविल को उन मूर्तियों का पता चल चुका है, वो अब यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें मूर्तियों का पता तो चल चुका है, लेकिन अभी भी उन्हें प्रॉपर ये नहीं पता कि मैंने उसे किस टाइम जोन में छुपाया है। अब अगर मैं उन्हें छोड़कर गया तो तुम्हारे और दादू के पास बचने के लिए शक्तियां तक नहीं। वहां पर अगर शैतान पहुंचा भी तो आकांक्षा, रिवांश, दादू, अलीजा सबके सबके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो उसका आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं। त्रिशान ने वहां से जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसने फिर से दादू की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा? जाह्नवी ने राजवीर जी की तरफ देखकर कहा, जो कि बेड पर बेहोश होकर गिरे थे। मैं अभी आता हूँ, कहकर त्रिशान बाहर आया। पिछली बार वो बाहर आया तो इतनी जल्दबाजी में था कि उसका ध्यान नर्स पर नहीं गया। बाहर आकर उसने देखा कि नर्स भी बाहर बेहोश गिरी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। त्रिशान उसके पास गया और उसकी नाक के आगे हाथ लगाकर देखा। थैंक गॉड कि ये अभी तक जिंदा है, जाते जाते उस शैतान ने इसे भी नहीं छोड़ा। त्रिशान ने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया और मंदिर से कुछ रुद्राक्ष की माला लेकर आया। उसने एक माला वहां मौजूद नर्स को पहना दी तो बाकी की मालाएं लेकर अंदर पहुंचा। ये लो, इससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ और हो ही नहीं सकता। इसे दादू को पहना दो और एक तुम भी पहन लो, वो किसी के शरीर में भी कब्जा कर सकता है, त्रिशान ने जाह्नवी की तरफ माला बढ़ाते हुए कहा। इन सब से जाह्नवी अभी तक डरी हुई थी, उसने जल्दी से राजवीर जी को माला पहनाकर एक माला अपने हाथ में पहन ली। त्रिशान, बाहर वो नर्स भी बेहोश पड़ी है। मुझे नहीं पता कि उसे कब होश जाएगा, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा है कि शैतान ने पहले उसके शरीर में घुसकर सब पता लगाने की कोशिश की होगी। जब हमने उसे बाहर भेज दिया तो उसने राजवीर दादू के शरीर पर कब्जा कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, होप कि वहाँ वो लोग सब कुछ संभाल लें, जानवी ने कहा। उसे परेशान देखकर त्रिशान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जानवी ने त्रिशान की बात पर पलकें झपकाई। दोनों वहां राजवीर जी के पास चुपचाप बैठे थे। बिना कुछ बोले हुए भी वो खामोशी उन दोनों के दिल का हाल बयां कर रही थी। चार चार चार। दूसरी तरफ अलीजा राजपुरोहित जी रिवांश और आकांक्षा को लेकर 18वीं सदी में पहुंच चुकी थी। वो लोग महल के आगे खड़े थे। अपनी सियासत में वापस आकर रिवांश के ये अपनी भावनाओं को काबू करना मुश्किल हो रहा था। हम 10 साल के थे तब हमने महल छोड़ दिया था। हमें तो ठीक से याद तक नहीं कि आखिरी बार कब हमने महल और अपनी माँ को देखा था, तब वो कैसे लगते थे, रिवांश ने भारी आवाज और नम आंखों से कहा। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम उनसे भी मिल लेना, आकांक्षा ने उसे संभाला। आकांक्षा, तुम रिवांश को लेकर जाओ और हाँ, ध्यान से तुम दोनों को कोई यहाँ देख ना ले। मैं राजपुरोहित जी के साथ जाती हूँ, अलीजा ने कहा। हम लोग मूर्तियों को तहखाने में ढूंढकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इस बीच तुम दोनों ध्यान रखना कि कोई उस तरफ ना आ जाए, राजपुरोहित जी ने कहा। उन तीनों ने राजपुरोहित जी की बात पर सहमति जताई और तहखाने की तरफ चल दिए। राजपुरोहित जी और अलीजा अंदर थे जबकि आकांक्षा और रिवांश बाहर खड़े होकर बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे। वो लोग उन लोगों के बीच में घुल मिल सके इसलिए अलीजा ने अपने जादू से उन सबके कपड़े उस जमाने के हिसाब से बदल दिए थे। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मूर्तियां कैसे और कहाँ मिलेंगी, राजपुरोहित जी ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। हाँ, ये तहखाना भी काफी बड़ा है, त्रिशान ने उन मूर्तियों को छुपाने के लिए ऐसी जगह चुनी थी जहाँ कोई उन्हें फिर से बाहर ना निकाल दे और कोई गलती से भी उन्हें छू या देख ना ले, अलीजा ने आगे बढ़ते हुए बताया। त्रिशान और अलीजा जब वो मूर्तियां छुपाने आए थे तब अलीजा बाहर पहरेदारी कर रही थी जबकि तहखाने के अंदर सिर्फ त्रिशान था, इस वजह से उसे जल्दी से मूर्तियां मिल नहीं पा रही थी। अलीजा और राजपुरोहित जी अंदर मूर्तियां ढूंढ रहे थे जबकि रिवांश और आकांक्षा बाहर पहरेदारी कर रहे थे।
काश हम एक बार अपनी माँ को देख पाते, हमने उन्हें काफी वक्त से नहीं देखा, हमें तो उनका चेहरा भी नहीं याद, रिवांश ने खोए हुए स्वर में कहा। एक बार मूर्तियां मिल जाएं और राजपुरोहित जी उन्हें नष्ट कर दें, उसके बाद हम थोड़ी देर महल घूम लेंगे और तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे, आकांक्षा ने कहा और अचानक ही वो सोच में गुम हो गई। उसे चुप देखकर रिवांश ने पूछा, आप क्या सोच रही हैं? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सपने में तुम्हारी माँ को देखा था, वहां पर तुम भी मौजूद थे, रिवांश ये वही दिन है जब तुम लंदन से वापस आने वाले थे और कभी वापस नहीं आ पाए, रास्ते में उन चारों ने हमारे साथ छल किया, रिवांश ने उसकी बात को पूरा किया और एक गहरे दुख में डूब गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अब शाम के 7 या 8 बज रहे होंगे, तुम लोगों ने पूजा की थी, वो रात का तीसरा पहर था, बोलते हुए आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब रिवांश, इस वक्त 18वीं सदी में तुम अभी तक इंसान ही हो।